الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة مريم کی ان آیات کی تفسیر ہم پچھلی چند کلاسوں سے پڑھ رہے ہیں. ان میں ہم نے پچھلے تو دو کلاسز کے اندر صرف جو لفظ راغبن استعمال ہوا ہے تو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کر کے عمل کر لی ہے. کسی کو کوئی سوال ہو اس پورے کے پورے ٹاپک کے اوپر تو وہ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے ہم اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک مکالمہ چل رہا ہے، کانورسیشن چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان. ٹھیک ہے، باپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر ہی رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ اتنی ادب کی ضرورت نہیں. اور وہ باپ بھی ایسا تھا کہ اس نے کوئی سپورٹ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی نفرت اور دشمنی والا معاملہ ہی کیا تھا. تو اگر سپورٹ بھی کر لیتا نا تو بھی، جیسے کہ خواجہ ابو طالب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو ہم ان کا نام جو ہے وہ ادب سے لیتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت تھی اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. ہر ہر موقع پر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب کا معاملہ ایمان والے کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں تھا، تو یہاں پر تو باپ نے ابراہیم علیہ السلام کہہ دیا تھا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم دور ہو جاؤ میری نظروں سے، واہجرنی مجھ سے دور ہو جاؤ ملین، ایک لمبے عرصے کے لیے. ملین کا ترجمہ تھا ایک لمبی مدت. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، سلامتی ہو تمہارے اوپر. جیسے جدا ہوتے ہوئے بس ہاں جی ٹھیک ہے السلام علیکم ایسے کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں نا، کہ تاکہ جو ہے وہ کسی بیڈ نوٹ کے اوپر، کسی یعنی برے کلمات کے اوپر ہماری جدائی نہ ہو، بلکہ بس ایک میں تم سے سلامتی میں رہوں اور تم مجھ سے سلامتی میں رہو، اس طریقے کی بات کر کے الگ ہو گئے. اور کہنے لگے سأستغفر لك ربی. سین پہلا والا جو ہے یہ انقریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انقریب ویری سون. استغفر میں استغفار کروں گا، لك تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، یعنی میں تمہارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کروں گا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو والد ہیں ان کے قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ اس نے ہدایت نہیں لینی ہے. تو مشرک کے لیے استغفار کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی جو شخص مشرک ہو اس کے لیے ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے اس کی دعا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شرک، کیونکہ مشرک جو ہے نا اس کا جو گناہ ہے وہ ہے شرک. ठीक है, उसका गुनाह ये नहीं है कि वो शराब पीता है या वो कोई और कोई बुरा काम करता है, वो उसके गुनाह जो है वो सारे के सारे शिर्क के तहत है। असल में जो उसका गुनाह है वो शिर्क है। तो अगर कोई कहे ना मुशरिक से कि मैं तुम्हारे गुनाहों की माफी की दुआ करूंगा अपने अपने अल्लाह से, तो उसको महमूल किया जाएगा इस बात पर कि उसके शिर्क की माफी की अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, ठीक है। लेकिन शिर्क जो है वो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, ठीक है। तो शिर्क के बारे में अल्लाह ताला का फैसला है और अटल फैसला है, ठीक है। अल्लाह ताला का अटल फैसला है कि शिर्क को मैं माफ नहीं करूंगा। तो इस वजह से शिर्क की माफी के लिए दुआ करना ही मना है, ठीक है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इल्म में इस वक्त की बात नहीं थी। तो अस्तग़फिरुलका रब्बी, मैं आपके गुनाहों से माफी की अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। इन्नहु काना बी हफिया, बेशक वो यानी अल्लाह ताला मेरा परवरदिगार बी मेरे साथ, बा का मतलब होता है साथ और उसके साथ याए मुतकल्लिम लगी हुई है, ठीक है। तो क्या हो गया मतलब कि मेरे साथ, हफियन, हफियन का मतलब होता है बहुत मेहरबान, ठीक है। बस ये एक सिफत है, यानी एक ऐसा लफ्ज है जिसका कि यानी जो कि एक सिफत को बयान करता है और इसका मतलब है मेहरबानी की सिफत, ठीक है। हफियन तो यानी मेरा परवरदगार जो है ना वो मेरी बात मान लेता है, मेरी बात सुनता है। इन्ना रब्बी लसमी और दुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ दुआ के ऊपर बहुत ज्यादा मान था, भरोसा था कि बेशक मेरा रब जो है वो तो दुआओं को सुनने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना वो अपने मान का गोया के इजहार कर रहे हैं कि मेरा रब तो मेरे साथ बहुत मेहरबान है, ठीक है। और इनका जो मान था ना अपने परवरदगार के साथ, ये हकीकत पर मबनी था, ये कोई धोखे पर मबनी नहीं था। धोखे पर मबनी होने का मतलब ये होता है कि इंसान खुद तो अल्लाह ताला का खूब नाफरमान हो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला हो जानबूझ करके और नबी की मुखालफत करने वाला हो, ठीक है, या नबी के जो वो रसा हैं उलमा और मशाइफ उनकी तो मुखालफत करने वाला हो, उनके साथ तो दुश्मनी रखने वाला हो, लेकिन बड़ा मान हो उसका, हो नहीं जी मेरा रब तो मुझे बहुत माफ करने वाला है, मेरा रब तो बड़ा मेहरबान है, मेरा रब तो ऐसा है, मेरा रब तो वैसा है, ठीक है। इसको कहेंगे झूठा मान, ठीक है। क्योंकि आप जो है वो नबी और नबी के वो रसा की जब मुखालफत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो है ना फिर ऐसे बंदे से ना सिर्फ ये कि उसकी मदद नहीं करता बल्कि उसकी उसकी उसके साथ दुश्मनी का ऐलान करता है, ठीक है। अल्लाह ताला का ऐलान है दुश्मनी है ऐसे शख्स के साथ कि जो कि उसके दोस्तों के साथ दुश्मनी करता है। तो कोई शख्स अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी करके फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी पर मान नहीं कर सकता। तो ऐसे मान करने को अगर कोई कहे कि मुझे तो मेरा रब तो बड़ा मेहरबान है, तो ऐसे को कहेंगे कि ये झूठा मान कर रहा है, झूठा भरोसा कर रहा है अल्लाह ताला के उसके ऊपर, यानी बेसिकली ये खुद जो है वो धोखे में मुब्तला है कि मेरा रब तो मेरी दुआएं सुनता है, लेकिन असल में क्या बात है कि अल्लाह ताला तो इसके साथ दुश्मनी का मामला रखते हैं क्योंकि इसने अल्लाह ताला के दोस्तों के साथ दुश्मनी करी हुई है, ठीक है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐसा मामला नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के दोस्तों के साथ दुश्मनी वाला कोई 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 तस्वुर ही नहीं था वहां पर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने वाले थे। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होती है कि अल्लाह के वैसे जो आम हुक्म है ना उन हुक्मों को मानना, ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि अल्लाह ताला के दोस्तों के साथ भी दोस्ती का मामला रखना, ठीक है ना। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह के दोस्तों के साथ दोस्ती का मामला रखना ये और भी ज्यादा जरूरी है। ये अल्लाह के हुक्मों के यानी अल्लाह के जो दूसरे अहकाम होते हैं ना उनको मानने के मुकाबले में अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी एक शख्स जो है वो बज़ाहिर नमाज रोजा हज जकात सारे काम करता है, ये तो इसको कहा जाएगा कि हाँ भाई अल्लाह के हुक्मों को मानता है, ठीक है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, जकात देता है, हज करता है और इस तरह के नेकी के काम जो है वो करता है, लेकिन अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी रखता है, ठीक है। तो ऐसे शख्स की जो है ना ये आमाल भी जाया हो जाते हैं, ऐसे शख्स के आमाल भी जाया हो जाते हैं, जबकि दूसरा शख्स जो है वो अल्लाह के दोस्तों के साथ दोस्ती रखता है लेकिन उससे जो है, लेकिन उससे जो है वो नमाज रोजा ज़कात वगैरह के अंदर कोताही हो जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो कि अल्लाह के दोस्तों के साथ दोस्ती रखता है लेकिन खुद जो है वो नेकी के काम जो है वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा शख्स जो है ना फिर अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखे तो अच्छी बात है, यानी क्योंकि वो अल्लाह के दोस्तों के साथ दोस्ती रखता है। ठीक है, लेकिन दूसरा शख्स जो है ना जो कि अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी रखता है वो अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखे ये बात ही नहीं सचती उसको। किसी ने बहुत सारे सवाल यहाँ पे पेश कर दिए हैं तो चले इंशाल्लाह थोड़ा बात आगे चला के, क्योंकि ये सवाल इस वक्त जो बात हो रही है उससे तो ताल्लुक नहीं रखते हैं, इस वजह से थोड़ी बात करने के बाद फिर आपके सवाल आपको देखेंगे। अच्छा, और ये कि आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अतज़िलुकुम, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि मैं तुमसे एतज़ाल इख्तियार करता हूँ। एतज़ाल का मतलब होता है अलग हो जाना। ठीक है, कि अतज़िलुकुम मैं छोड़ता हूँ तुमको, वमा तदउना मिन दूनिल्लाही, और उन लोगों को भी उन चीजों को भी, माँ का मतलब होता है वो जो, माँ का मतलब है वो जो, यानी मैं उन चीजों को भी छोड़ता हूँ, तदउना तुम जिनको पुकारते हो, तुम जिनसे दुआ करते हो, तदउना तुम जिनसे दुआ करते हो, मिन दूनिल्लाही अल्लाह को छोड़ करके, दूना का मतलब होता है विदाउट बगैर। ठीक है, जैसे उर्दू में हम बगैर, तो दून अल्लाह का मतलब होगा अल्लाह के बगैर, अल्लाह के अलावा। ठीक है, तो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा मैं उनको भी छोड़ता हूँ, अतअज़िलुकुम मैं तुमको भी छोड़ता हूँ और मैं उनको भी छोड़ता हूँ कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, वह अदउ रब्बी और मैं दुआ करता हूँ अपने रब से। ठीक है, यानी इस हाल में तुम्हें छोड़ता हूँ कि मैं तो अल्लाह ताला ही से दुआ करता रहूंगा, अल्लाह ताला ही से मांगता रहूंगा, मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं से नहीं मांगूंगा। असा, असा का तर्जुमा करते हैं उम्मीद है कि अन ला अकूना बिदुआए रब्बी शकिया। अल्लाह का जो लफ्ज है ना ये है असल में अन, जिसका तर्जुमा होता है के, और उसके बाद है ला, तो है ये होता है अन ला, लेकिन उसको जोड़ करके अल्ला पढ़ देते हैं। ठीक है, नून को जो है वो साकिन कर देते हैं और लाम के साथ हमजा को जोड़ देते हैं तो वो अल्ला बन जाता है। तो इसका तर्जुमा हुआ के नहीं, असा के नहीं, अकूना, अकूना का मतलब के मैं हूंगा, तो ला अकूना मैं नहीं हूंगा, मैं नहीं हूंगा बेदुआई रब्बी अपने रब को पुकारने से, अपने रब को पुकारने से शकिया, शकी कहते हैं महरूम को, जो रहमतों से महरूम रह जाए, नेमतों से महरूम रह जाए उसको शकी कहते हैं। जब भी इसका तर्जुमा उर्दू में बदबख्त से भी करते हैं, बदबख्त, बदबख्त का मतलब क्या, बख्त कहते हैं हिस्से को, जैसे नसीब होता है ना बदनसीब, उसी तरीके से बदबख्त हिस्से को कहते हैं और बख्त भी हिस्से को कहते हैं। तो बदबख्त उस शख्स को कहते हैं कि जिसके हिस्से में बुरी चीज आई हो, या बदनसीब भी उसी को कहते हैं कि जिसके हिस्से में बुरी चीज आई हो। ठीक है, तो शकी अरबी में लफ्ज होता है शकी, शकी का मतलब बदबख्त, बदनसीब, कि जिसके हिस्से में बुरी चीज आई हो। ठीक है, तो मतलब इसका कहने, यानी मतलब कहने का ये हुआ कि मैं अपने रब से ना दुआ मांगने के मामले में शकी नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा कि मैं तो अल्लाह से मांग रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे अता ना करें, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को ना सुने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन रब्बी लसमी और दुआ, दीगर मौका पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया मेरा रब तो सुनने वाला है। ठीक है, तो रब जो है वो दुआओं को कबूल करते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसकी इजहार जो है वो 3 शक्लों में होता है जिसके बारे में हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं। तो असा अल्लाह अकूना बिदुआए रब्बी शकिया, मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं रहूंगा अपने रब की बंदगी करके महरूम। यहाँ पर दुआ का तर्जुमा हजरत ने बंदगी से किया है। ठीक है, लेकिन बंदगी और दुआ ये एक ही मफहूम में भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अद्दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अद्दुआओ हुवल इबादा, कि दुआ ही बंदगी है। अद्दुआओ हुवल इबादा, दुआ ही बंदगी है। ठीक है, यानी जो इंसान इबादत करता है अल्लाह ताला की, तो वो इबादत इबादत बनती ही उस वक्त है जब वो अपने रब से रुजू करके अपने रब को पुकार रहा हो। ठीक है ना, और रब को पुकारना ही तो दुआ कहलाता है। तो दुआ और इबादत जो है ना, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ये अलग अलग नहीं कि दुआ अलग चीज है और इबादत अलग चीज है। ठीक है, इबादत भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बंदा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो और अल्लाह ताला ही से जो है वो मांग रहा हो। ठीक है, तो इसी वजह से हजरत ने यहाँ पर दुआ का तर्जुमा जो है वो बंदगी से कर दिया है। फलम्मा अतज़लहुम। अब ये जो है वो फलम्मा से पस जब, लम्मा का तर्जुमा जब से कर देते हैं और फा का तर्जुमा फिर जब एतज़ा वो जुदा हो गया हम उन लोगों से, यानी अपने बाप से और बाप के साथ जो दूसरे लोग उस इलाके के रहने वाले लोग थे और जो उनके झूठे खुदा थे, खुद वगैरह जो थे, उन सब से जब ये जुदा हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी इन्होंने हिजरत कर ली, इन्होंने उस इलाके को ही छोड़ दिया, अपनी बीवी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने हिजरत कर ली। तो उसको एतज़ा लहुम, इस एक लफ्ज़ से ना अल्लाह ताला ने उस हिजरत का हाल बयान कर दिया है कि वो निकल गए अब यहाँ से। वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और वो जिनको कि वो अल्लाह ताला को छोड़ करके जिनकी इबादत किया करते थे, यानी बुतों को भी छोड़ करके ये अलग हो गए, हिजरत कर ली। वहबना, वहबा यहिबू का मतलब होता है देना, हिबा कर देना। ठीक है ना, यानी कोई चीज अता कर देना, हिबा कर देना। तो वहबना का मतलब हुआ कि हमने बख्श दिया उनको, हमने हिबा कर दिया उनको। वहबना लहू, और हमने हिबा कर दिया लहू यानी उसको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसहाक व याकूब। इसहाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, ठीक है, व याकूब, और याकूब जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अक्सर जगहों पर कुरान में जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों का जिक्र किया ना, तो वहां पर सिर्फ बेटे का जिक्र नहीं बल्कि पोते का भी जिक्र किया। ठीक है, इसहाक व याकूब दोनों का जिक्र करते हैं अक्सर जगहों पर, हर जगह पर नहीं लेकिन अक्सर जगहों पर। तो हमने फिर हिजरत के बाद फिर उनको औलादें अता फरमाई। वकुल्लन जअलना नबिया, और कुल्लन का तर्जुमा वैसे तो हर एक से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो इस वजह से कुल्लन का तर्जुमा दोनों से। वकुल्लन दोनों, जअलना हमने बनाया उनको नबियन। ठीक है, नबी बनाया, सबको पता है कि ईसा और याकूब अलैहिस्सलाम दोनों नबी थे। वहबना लहुम, वाओ का तर्जुमा तो और से, फिर उसके बाद वहबना दोबारा फरमा रहे हैं, लहुम वहबना लहुम यानी हमने बख्श दिया उनको, मिन रहमतेना अपनी रहमत में से, वजअलना लहुम और बना दिया उनके लिए, या कर दी, जालना का तर्जुमा जो है वो बना दिया से भी करते हैं और कर दिया से भी करते हैं। ठीक है, हो जान कर यानी कर दिया, बना दिया। वजअलना लहुम और हमने किया उनके लिए लिसान सिद्कन अलिया, लिसान जुबान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल, क्योंकि जुबान का जो असल काम होता है वो बोलना होता है, तो कभी तो किसी उस का जो है ना वो नाम उसके यानी उसके मानी में इस्तेमाल किया जाता है, कभी जुबान जो है वो जुबान है, लेकिन कभी जो है किसी उज्व का नाम लेकर के जो उस उज्व का असल काम होता है ना, उस काम के मानी लिए जाते हैं, क्योंकि लिसान का असल काम जो होता है वो बोलना होता है, चखना भी होता है, लेकिन चखना जो है ना वो उसकी बुनियादी मकसद नहीं है जुबान का, बल्कि जुबान का बुनियादी मकसद है बोलना। तो इस वजह से यहाँ पर लिसाना का तर्जुमा बोल से किया। तो
हमने उनके लिए एक बोल, यानी एक बोल बनाया, सच्चा बोल, और अलिया ऊंचा बोल, यानी हमने उनकी बातों को सच्चा किया और ऊंचा किया। ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादें थीं जिनको हमने नबी बना दिया, अब इनके जो अकवाल थे ना, तो उन अकवाल को हमने सच्चा और ऊंचा बनाया। ठीक है, सिद्क सच को कहते हैं और अलिया ऊंचे को कहते हैं। अकवाल जर्री, जैसे बड़े लोगों के अकवाल होते हैं तो उनको हम कहते हैं अकवाल जर्री, गोल्डन वर्ड्स। अच्छा, किसी को कोई कोई सवाल है? वैसे अंदाजा है कि जरा तर्जुमे में थोड़ी सी मुश्किल हो गई होगी समझना, फिर भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। तो ये जी बिलाखिर इन आयात का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। वो असल में जो पीछे 46 आयत थी तो उसमें फिर दो क्लासें अलग लग गई, तो उस वजह से बड़ा लंबा होगा। अच्छा, खुलासे तफसीर से पहले इनके सवाल को देख लें। उन्होंने असल में उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर सवाल भेजे थे, लेकिन चूंकि उमूमी नौयत के थे तो इस वजह से साजिश ने उनसे कहा था कि वो क्लास में कर लें। ठीक है, तो कोई उमूमी नौयत के सवाल फिर अगर अलग से उनके जवाब देने लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो क्लास तो इसीलिए है ना, ताकि जो जनरल सवाल हों तो वो क्लास में पूछ लिया जाए। तो इस वजह से उनसे कहा था कि यहाँ पर पोस्ट कर दिएगा, लेकिन अभी सारे थोड़ा थोड़ा करके पोस्ट करती हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। चले, अच्छा सवाल ये है कि पहला सवाल है कि जी महरम इज इम्पोर्टेंट, देर इज नो प्लेस ऑफ फिफ्थ मैन इन वुमेन्स लाइफ एक्सेप्ट फादर ब्रदर हस्बैंड एंड सन, बट एक्सेप्ट दिस हाउ वी डिफ्रेंशिएट, एक्सेप्ट दिस हाउ वी डिफ्रेंशिएट। अच्छा, अदर देन दिस, आपका मतलब है अदर देन दिस, यानी आप लोगों को एक मैसेज भेजा था दी एसेंशियल्स फॉर वुमेन के ग्रुप के ऊपर, कि जिसका बेसिकली उनवान ये था कि हर पांचवा मर्द जो है वो भेड़िया होता है औरत के लिए। ठीक है, तो पांचवा मर्द से क्या मुराद थी कि जो शुरू के चार मर्द होते हैं ना, बाप, भाई, शौहर और बेटा, तो ये तो है चार मर्द जिनके अंदर अल्लाह ताला ने जो कि महरम भी होते हैं, शौहर तो खैर शौहर होता है, बाकी जो है वो महरम होते हैं, और इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक तो यानी मोहब्बत की सिफत रखी है, इज्जत की सिफत रखी है औरत के लिए, और यानी गैरत की सिफत, मर्द के जो शौहर होता है उसके अंदर गैरत की सिफत रखी है। तो ये चार जो होते हैं ना, ये तो करते हैं ये तो करते हैं औरत की हिफाजत। ठीक है, लेकिन जो पांचवा मर्द होता है ना, तो वो फिर हिफाजत कोई नहीं करता, बल्कि वो भेड़िया होता है, और भेड़िया जो होता है वो बेसिकली उसका मकसद होता है कि भेड़ को खाना या बकरी को जो है ना वो किसी तरीके से शिकार करना और उसको हड़प कर लेना। ठीक है, तो ये जो है वो उसका मजमून था जो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अब इनका सवाल जो है ना वो ये है कि जी अगर पांचवा मर्द जो होता है ना, तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वो वाकई भेड़िया है कि नहीं है। जैसे कि लिखा कि जी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे मुखलिस होते हैं, लिहाज से बात करते हैं, कोई मजबूरी हो तो मदद भी करते हैं, अच्छे होते हैं, दीनदार हो या ना हो, यानी वो दीनदार हो या ना हो लेकिन वो अच्छे होते हैं और आपकी मदद करते हैं और आपके साथ अच्छे लिहाज से बात करते हैं, मुखलिस होते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसे भी तो होते हैं ना जो कि ना बाप है, ना भाई है, ना बेटा है, ना शौहर है, लेकिन अच्छे से बात कर रहे हैं। तो सवाल इनका ये है, तो क्या हम गलत समझते हैं उनको, यानी उनको हम मुखलिस समझते हैं तो क्या उनको गलत मुखलिस समझते हैं, क्या अच्छे होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, या कितनी भी मजबूरी हो या ना हो बस अपना कोई काम हो औरत को निकलना ही नहीं चाहिए बगैर महरम के, क्या सिर्फ दीनदार लोग जो सच्चे तकवा परहेजगार होते हैं बस सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका सवाल है कि क्या औरत को महरम के बगैर निकलना ही ना चाहिए, किसी जो है वो दीनदार मुत्तकी परहेजगार शख्स के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, असल में कुदरतन हुआ ये कि जब आप लोगों को ये मैसेज भेजा था ग्रुप के ऊपर, और सुबह जो है वो इस मैसेज के ऊपर क्लास में बात भी हुई थी कि पांचवा मर्द जो होता है वो भेड़िया होता है। तो कुदरतन का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से ये हुआ, यानी हमारा कोई पीछे से प्री प्लान्ड कोई ऐसा नहीं था कि जी हमने सुबह को ये चीज पढ़ानी है और रात को ये चीज पढ़ानी है, बल्कि हुआ ये कि सुबह को जो है वो सूरह मरियम की तफसीर चल रही होती है क्लास में, तो रात को जो है वो सूरह ताहा की तफसीर चल रही है क्लास में। ठीक है, तो अब हम तो चलते हैं टैंजेंट्स के अंदर, कभी कुछ लंबा लंबा जो है वो मौजूद चल जाता है। बहरहाल रात की जो तफसीर उसी दिन की जो रात में सूरह ताहा की तफसीर पढ़ाई ना, तो उसके अंदर जो है वो वाकया आ गया मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों वाला वाकया। ठीक है, कि जब शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां कुएं के बराबर में खड़ी हुई थी और अपनी लड़की अपनी अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला पा रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है वो उनको देखा कि भाई ये लड़कियां जो है वो पानी क्यों नहीं पिला रही हैं। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया कि भाई क्या तुम्हारा क्या मामला है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे वालिद साहब तो बहुत बूढ़े हैं, तो अबूना शेखुन कबीर बूढ़े हैं और हम तो खड़े हुए हैं क्योंकि ये लोग तो हमें पानी नहीं पिलाने देते अपनी बकरियों को। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो उनकी बकरियों को पानी पिला दिया और फिर उसके बाद लड़कियां जो है वो वापस चली गई घर और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो दरख्त के साय में आकर के बैठ गए और वहां पे आकर के फिर वही दुआओं में मशगूल, अल्लाह के वली अल्लाह के नबी, फिर दुआओं में मशगूल, रब इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ठीक है, तो यही वाकया जो है वो रात को भी क्लास के अंदर आ गया ये वाला वाकया। तो उसका फिर यही बात शुरू हुई, मर्दों में भी फिर यही बात करी कि औरत का जो पांचवा मर्द होता है वो भेड़िया होता है, क्योंकि वो मजमून हमने मर्दों के साथ भी शेयर किया था, सिर्फ औरतों के साथ शेयर नहीं किया था, मर्दों की क्लासेस में भी भेजा था। तो हर पांचवा मर्द जो होता है वो भेड़िया होता है सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बंदे के। ठीक है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी इन लड़कियों के ना वालिद थे, ना भाई थे, ना बेटे थे, ना शौहर थे। ठीक है, तो ये भी तो पांचवें ही मर्द थे ना। ठीक है ना, पांचवें मर्द में तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटीज थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल था वो क्या था कि ये कवि भी थे लेकिन साथ साथ अमानतदार भी थे। और अमानतदारी की तफसील भी पूरी तफसील के अंदर आई है कि जी अमानतदार कैसे थे, क्योंकि इन्होंने जब इनकी मदद करी लड़कियों की तो उसके बाद जो है ना इन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा इनके साथ, बल्कि अलग होकर के जाके बैठ गए। और जब वो अकेली लड़की फिर आई इनको बुलाने के लिए शुएब अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर, उनकी एक बेटी मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई, तो इन्होंने नजर उठा करके भी उनकी तरफ नहीं देखा, नजरें नीची करके रखी। हत्ता के जब घर जाने लगे उनके उनके बाप के बुलाने पर बेटी के साथ उनके घर जाने लगे, तो उस वक्त जो है वो उनसे कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चले, मेरे आगे भी ना चले, ताकि मेरी निगाह ही ना पड़े आपके ऊपर। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो है वो पीछे पीछे चल रही थी और पीछे से बताती थी कि अच्छा अब आप दाएं मुड़ जाएं, अब आप बाएं मुड़ जाएं, क्योंकि रास्ता बताने के लिए तो कहना पड़ता है ना कि अब आप इस तरफ हो जाएं, अब आप इस तरफ हो जाएं। ठीक है, वरना उमूमी तौर पर तरीका क्या होता है कि जो रास्ता बताने वाला होता है वो आगे चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना लिहाज किया कि वो पीछे चल रहे थे। ठीक है, तो अब उसके ऊपर यही बात लोगों को बताई थी कि भाई हर पांचवा शख्स जो होता है वो भेड़िया नहीं होता, वो तो एक खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मजमून है, क्योंकि वो बुरे लोगों की बात हो रही है उस मजमून के अंदर जो उस लड़की के साथ मामला हुआ नूर मुकद्दम, क्योंकि उसका उठना बैठना जो था वो अच्छे माहौल के अंदर नहीं था। ठीक है, और जाहिर है जिसके साथ उसने दोस्ती लगाई हुई थी एकदम गैर शरई और हराम दोस्ती थी वो, तो अब वो शख्स जो है वो तो अमानतदार और नेक नहीं था ना वो शख्स। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि वो भेड़िया होते हैं, ऐसे लोग भेड़िया होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। तो अब जो है ना ये डिस्कशन निकली, मतलब इनका जो सवाल निकला, डिस्कशन तो खैर नहीं, लेकिन इनका जो सवाल निकला वो क्या कि भाई हमें कैसे पता चले कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़िया नहीं है, कौन मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। ठीक है, तो उसका जवाब जो है ना वो ये है कि भाई हमें किसी के दिल का नहीं पता होता। ठीक है, दिल का हाल जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है ना। अल्लाह ताला अगर किसी को किसी के दिल का हाल बतला दें तब उसको दिल का हाल पता चलता है, वरना दिल का हाल किसी का पता नहीं चलता। ठीक है, यानी दिल का हाल कोई बंदा खुद से मालूम नहीं कर सकता, अल्लाह ताला बता दे तब पता चलता है दिल का हाल। और अल्लाह ताला जो है ना वो सिर्फ अपने नबियों को लोगों के दिल का हाल बताते थे जब बताते थे, वरना नबियों को भी हर एक के दिल का हाल नहीं पता होता था, हर एक के दिल का हाल नबियों को भी नहीं पता होता था। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत सारे मामलात में दिलों के हाल जो है वो नबी को बता देते थे। जैसे कि हदीसों के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात आए कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम को किसी के दिल का हाल पहले से पता चल गया था। ठीक है, तो जब नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए ना, तो फिर जो है वो जो जो सहाबाए कराम थे उनके नजदीक फिर क्या क्राइटेरिया था किसी के साथ मामला करने का, वो दिल का हाल नहीं था कि भाई इसके दिल का हाल बड़ा अच्छा है इस वजह से मैं उसके साथ जो है वो अच्छा मामला करता हूँ। हम लोग कह देते हैं ना कि हाँ भाई वो दिल का बड़ा नेक है, वो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कहना जो होता है ना ये हकीकत पर मबनी नहीं होता कि वो दिल का बड़ा अच्छा है। भाई आपको क्या पता उसके दिल के अंदर क्या है। तो हम जो किसी के साथ मामला करते हैं ना वो दिल के हाल की बुनियाद पर नहीं करते असल में, बल्कि असल में हम जो है वो जाहिरी अहवाल के मुताबिक करते हैं, जाहिरी अहवाल के मुताबिक, है ना। हुक्म जो है वो जाहिर के ऊपर लगाया जाता है कि जाहिरी तौर पर वो कैसा है। तो दिल का कोई अच्छा है, हो सकता है अच्छा हो सकता है अच्छा ना हो, हमें क्या पता। हमारा मामला है वो जाहिर की बुनियाद पर है। ठीक है, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं। क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी लगाई है वो जाहिरी अहवाल की लगाई है। ठीक है, क्या हमने अच्छे जाहिरी अहवाल देख करके किसी के साथ मामला किया तो हमें सवाब मिलेगा। ठीक है, सवाब मिलना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हमने किसी के जाहिरी अहवाल देख करके उसके साथ अपना मामला किया तो हमें हमारे नामे अमाल के अंदर एक नेकी लिख दी जाएगी या 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, नहीं, सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि सवाब के साथ साथ जो है ना एक और भी चीज इंसान को मिल रही होती है। सवाब के साथ साथ एक और भी चीज इंसान को मिल रही होती है, वो क्या होती है, वो होती है अल्लाह ताला की हिफाजत, अल्लाह ताला की हिफाजत। ठीक है ना, जब आप नेकी का काम करते हैं अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपना मामला करते हैं ना, तो आपको सिर्फ सवाब नहीं मिलता कि जी बस एक एंट्री ऐड हो गई है आपके नाम है अमाल के अंदर, नहीं, बल्कि साथ साथ आपको अल्लाह ताला की हिफाजत भी मिलती है। ठीक है, और जब हम शरीयत के हुक्मों के मुताबिक काम नहीं कर रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे होते हैं, तो भी सिर्फ ये नहीं होता कि कोई गुनाह टाइप की कोई चीज जो होती है वो हमारे नामे अमाल के अंदर ऐड हो जाती है, एक गुनाह की एंट्री जो है वो उसके अंदर लिख देते हैं नामे अमाल के अंदर, फरिश्ता लिख देता है गुनाह, नहीं, सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की हिफाजत भी हमसे दूर हो जाती है। जब हम गुनाह करते हैं तो इसके लाजमी दो नतीजे निकलते हैं। एक नतीजा ये कि नामे अमाल के अंदर गुनाह लिखा गया, ठीक है ना, अब कयामत के दिन उस गुनाह को खोला जाएगा, क्योंकि गुनाह जो है वो कयामत के दिन सबका हिसाब होगा। ठीक है ना, क्या ये गुनाह जो है वो क्यों किया, ये तुम्हारे नामे अमाल में लिखा हुआ है, अच्छा इसकी वजह से तुम्हें जहन्नुम के अंदर ये वाली सजा मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया ना, गुनाह लिखा गया। लेकिन दूसरी क्या चीज हो रही होती है गुनाह करने के ऊपर, कि इस दुनिया में हमसे हिफाजत अल्लाह ताला की दूर हो रही होती है, अल्लाह की हिफाजत दूर हो रही होती है हमसे। ठीक है ना, और ये मामला इंसान के साथ दुनिया में हो रहा होता है। ठीक है, हिफाजत का दूर होना, ये दुनिया में हिफाजत दूर हो रही होती है। ठीक है, कयामत का हिसाब किताब तो कयामत के दिन होगा। ठीक है, तो इस वजह से ना हमें अल्लाह ताला ने जो मुकल्लफ बनाया है, जो जिम्मेदारी डाली है, वो ये है कि हम इंसान के जाहिरी अहवाल को देख करके उसके साथ मामला करें। ठीक है, अब जो है ना कोई औरत किसी मर्द के ऊपर एतमाद कर लेती है कि हाँ भाई ये तो जी बड़े लिहाज से मुझसे बात करते हैं और ये तो जी मेरी बड़ी मदद करते हैं, तो अब इसकी बुनियाद पर उस औरत ने फैसला कर लिया कि जी ये तो बड़े मुखलिस हैं, ये तो बड़े मुखलिस हैं। मुखलिस होने का मतलब क्या होता है पता भी है हमें कि मुखलिस होने का मतलब क्या होता है? मुखलिस होने का मतलब होता है دل کے بڑے نیک ہیں, ہے نا, کیونکہ مخلص اخلاص سے نکلا, اور اخلاص جو ہے وہ دل کی نیت کا خالص ہونا, اس کو اخلاص کہتے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر ہونا, اس کو اخلاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گویا کہ وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کے دل کے حال کا پتہ ہے, مجھے اس کے دل کے حال کا پتہ ہے, آئی کین سی تھرو ہز ہارٹ, میں ایسی ہوں, ہے نا, کہتے ہیں نا اللہ کے کچھ ولی ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ کشف القلوب حاصل ہوتا ہے, ایسی بولنے کہنے کی بات ہوتی ہے, حاصل واصل کوئی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑا سا ایک سمجھ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ کشف ان کو مل جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو مستقلاً کشف القلوب حاصل ہے, ہر ایک کا دل کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ہے نا, ایسا مقام تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا, تو آج کے اولیاء کے پاس کیسے ایسا مقام آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہرحال یہ عورت گویا کہ کلیم کر رہی ہے کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے, میں ہر بندے کے قلب کے تھرو دیکھ سکتی ہوں کہ کیا ہے اس کے قلب کا حال, اسی طریقے سے میں اس بندے کے بھی قلب کے تھرو دیکھ رہی ہوں کہ اس کا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. وہ عورت دھوکے میں مبتلا ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ جی وہ بڑے مخلص ہیں, یہ کیوں مخلص ہیں بھائی, کیسے پتا چلا آپ کو, آپ اس کے دل کے تھرو دیکھ سکتی ہیں, نہیں جی دل کے تھرو تو نہیں دیکھ سکتی, وہ تو مجھے ابھی تک اس کی ٹریننگ حاصل نہیں ہوئی ہے کہ دل کے تھرو کیسے دیکھتے ہیں, لیکن بڑے لحاظ سے بات کرتے ہیں جی میرے ساتھ یہ, اور جو میری مجبوری ہوتی ہے نا تو اس میں میری مدد بھی کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے مخلص ہیں. نہیں, اس عورت کو کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, وہ غلط فہمی کا شکار ہے, یہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, ہزار میں سے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص واقعی آپ کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی ہو نہیں, لیکن آپ کو کیا پتا, آپ کو تو پتا نہیں ہے نا کہ اس نے آگے جا کر کے کیا پرپرزے نکالنے, کیا کرنا ہے اس نے آگے جا کر کے کام. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے کے فیصلے جو ہے نا وہ کسی کے بارے میں ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کہ جو کہ دیندار نظر بھی نہیں آ رہا ہو, نیک پرہیزگار اور شریعت کی پابندی کرتا بھی نہیں ہے ایسا بندہ, ٹھیک ہے نا, اور پھر بھی آپ جو ہے وہ اس کی یو نو ہی از اے نائس گائے, نائس گائے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہرگز نہیں, بالکل بھی اعتماد نہیں کر سکتے. بھائی ظاہر کو دیکھیں, کیا ظاہری طور پر یہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, اور شریعت کی پابندی عورت کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا, عورت کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں مرد کے, اس کے اندر شریعت کی پابندی کیا ہوتی ہے, یعنی ایک مرد جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک مرد کسی عورت کے ساتھ کوئی بزنس ڈیلنگ کر رہا ہے, جیسے دکان میں آپ جاتی ہیں تو دکان میں جو ہے وہ آپ بزنس ڈیلنگ کرتی ہیں نا کہ جی مجھے فلانا کپڑا دکھا دو, مجھے یہ چیز دکھا دو, یہ کرو یہ کرو, پھر اس کے بعد وہ آپ کو قیمت بتاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ قیمت میں اس سے نیگوشیٹ کرتی ہیں, یہ بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی قدرتاً یہی والی مثال جو ہے وہ ہم نے پچھلی دو تین کلاسوں میں استعمال بھی کری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کسی کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کر رہی ہیں کسی مرد کے ساتھ, تو اس میں شریعت کیا ہوگی, ایک شریعت تو ظاہر ہے کہ ہاں بھائی وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, ٹھیک ہے نا, تو جتنی قیمت ہے اس کے پروڈکٹ کی اتنی قیمت آپ کو بتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا اس پروڈکٹ کے بارے میں, لیکن اس سے بھی پہلے جو چیز دیکھی جائے گی مرد کے اندر کہ یہ شریعت کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, وہ یہ ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ بات چیت کے دوران نگاہیں کدھر رہتی ہیں, عورت کے ساتھ بات چیت کے اندر اس کی نگاہیں کدھر رہتی ہیں, سب سے پہلی انڈیکیشن ہوگی اس مرد کی نگاہوں کی, یہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, یہ لازمی سب سے پہلی چیز دیکھنی پڑے گی کہ اس کی نگاہیں کدھر رہتی ہیں, عورت کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز آپ بتا دیں, دوسری چیز کیا دیکھنی پڑے گی, یعنی کسی مرد کو آپ ظاہری طور پر ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ امانتدار مرد ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک چیز پہلے آپ کو بتا دی کہ وہ جو ہے وہ آپ کو جو 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 کپڑا سیل کر رہا ہے, جو پروڈکٹ سیل کر رہا ہے اپنی دکان کی, اس کو جو ہے وہ یعنی جھوٹ بول کر کے سیل نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک امانتداری کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے, ٹھیک ہے نا, ये तो हर औरत समझती है कि हाँ भाई दुकानदार अब मुझसे अगर झूठ बोलेगा ना तो इसका मतलब ये है कि वो नेक नहीं है, ये तो हर औरत समझती है इस बात को। ठीक है, पहली वाली निशानी अक्सर औरतों को नहीं पता होती कि निगाहों का नीचा रहना ये अमानतदारी के लिए लाजमी है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या, एक और भी चीज है इसके अंदर, वो अगर आप में से कोई बताए, एक और भी निशानी अमानतदारी, मर्द की अमानतदारी को जज करने के लिए एक और निशानी, वो बताएं। जी जी बहुत जरूरी है ये, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यू बेटर लर्न इट, लर्न इट। इन्होंने लिखा है, वैसे डायरेक्ट मैसेज में लिखा है, जुबान की हिफाजत गालिबन, गालिबन जी एच के साथ लिखे तो वो गालिबन सही बनेगा, ज्यादा बातें नहीं करेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बात करने का तरीका, बात करने का तरीका तो उसको मर्दों को खूब आता है, ये यानी जिसको हम कहते हैं ना बात करने का तरीका, है ना, वो बड़े मेहरबानी के लहजे में बात करना, बड़ा जो है वो स्वीट टॉक करना, ये मर्दों को बहुत आता है, औरतों को भी आता है, मर्द औरतों को ज्यादा आता है, लेकिन मर्दों को जिन्होंने औरतों को फांसना होता है ना उनको बात करने का तरीका बहुत आता है। ठीक है, तो आपका अगर ये मुराद है बात करने के तरीके से कि वो स्वीट टॉक करता है कि नहीं करता, ये बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि जो उन्होंने कहा है कि वो ज्यादा बातें नहीं करेगा, ज्यादा बातों से मुराद क्या है, ज्यादा बातों से मुराद है फजूल बात नहीं करेगा, काम से हट के बात नहीं करेगा, इधर उधर की बातें नहीं करेगा। ठीक है ना, ये लाजमी शर्त है, लाजमी शर्त। ठीक है, यानी जो जो जरूरत है, जरूरत एब्सोल्यूट नीड जो है, जिसकी वजह से औरत से बात करनी पड़ रही है, ठीक है ना, ये औरत को मर्द से बात करनी पड़ रही है, उससे हट करके और सुनाए क्या हाल चाल है आपके, और आप बाजी जान आपके घर में अभी जो है वो ये सब ठीक चल रहा है, और बाजी जान और अम्मी जान और आपी जान, है ना, आपी जान करके बात करेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर वो घर के अहवाल पूछेगा और दूसरी चीजें पूछेगा, इधर उधर की बातें करेगा, ठीक है, जिसको के औरत समझेगी हाँ भाई ये मेरा इतना जो है वो मेरा खैर ख्वाह है, और इसको इतनी फिक्र है मेरे मेरे हालात की, है ना, और मेरे जो है वो जख्मों पे मरहम रखने के लिए ये तो कोई फरिश्ता सिफत इंसान आ गया है। ठीक है, नहीं, जरूरत के अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेगा। ठीक है ना, ये अमानतदारी की लाजमी शर्त है, निगाहों की हिफाजत, और निगाहों की हिफाजत के बाद डिस्कशन की जो टॉपिक्स है, बल्कि ये और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि निगाहों की हिफाजत बहुत मुश्किल काम है एक मर्द के लिए, लेकिन धोखा देने के लिए निगाहों की हिफाजत कर भी लेगा ताकि औरत धोखे में मुब्तला हो जाए, वो अपनी निगाहों की भी हिफाजत कर लेगा ताकि औरत धोखे में मुब्तला, हाँ जी कितना मुत्तकी परहेजगार है कि मुझे मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा, लेकिन बातों में जो है ना वो आगे बढ़ेगा, क्यों, इसलिए कि अगर वो बातों में आगे ना बढ़े तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं, अगर वो बातों में आगे ना बढ़े तो फिर तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, दोस्ती होगी नहीं, है ना, दिल नरम पड़ेंगे ही नहीं अगर वो बातों में आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस वजह से ये उससे भी ज्यादा अहम क्राइटेरिया है किसी मर्द की अमानतदारी को चेक करने के लिए कि वो बातों में क्या बातें करता है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है, उसने बात आगे बढ़ानी है, काम निकलवाना है अपना औरत से, तो अब उसकी मजबूरी है कि वो डिस्कशन एक्सपैंड करे, मजबूरी है उसकी, करना पड़ेगा उसको, आज नहीं करेगा कल नहीं करेगा, हो सकता है 3 दिन के बाद करे, 4 दिन के बाद करे, 5वीं मुलाकात पर करे, छठी फोन डिस्कशन के ऊपर करें, लेकिन करनी पड़ेगी उसको ये वाली बात कि इधर उधर की डिस्कशन उसको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो यानी ये समझ लें कि ये लाजमी शर्त है देखनी कि बातों के अंदर वो इधर उधर की बातें ना करें, ठीक है ना। ये बात हो गई कि जी बहुत सारे आपको भाई भाई लोग मिल जाएंगे दुनिया के अंदर, बहुत सारे आपको बाप की तरह से भी सर के ऊपर शफकत का हाथ फेरने वाले मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला के साथ हमारा ये यानी अल्लाह ताला के साथ हमारा ये 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 शर्त है कि अल्लाह की हिफाजत जो है ना वो अल्लाह के हुक्मों को मानने में आती है, ठीक है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेंगे बल्कि हम जो है वो किसी गैर महरम के साथ, मर्दों के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द, गैर महरम के साथ जो है वो गलत काम यानी अल्लाह के हुक्मों के से हट करके कोई काम करेंगे ना, तो अब हमारी अपनी अकल कितनी ही क्यों ना कह रही हो कि जी ये तो बड़ा अल्लाह के वली हैं और ये तो बड़े वो हैं, अच्छे हैं और बड़ी लिहाज से मुझसे बात करते हैं। भाई जब अल्लाह की हिफाजत उड़ गई ना, क्योंकि आपने तो अल्लाह के हुक्मों के बारे में के मुतालिक काम नहीं किया ना, तो फिर अल्लाह की तो हिफाजत उड़ गई ना भाई, किसी मर्द के दिल में बुराई का ख्याल आना ये कौन डालेगा? बुराई का ख्याल ये शैतान डालेगा ना, और शैतान को इजाजत कौन देगा बुराई का ख्याल डालने की? अल्लाह ताला। शैतान अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता। तो जब अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से शैतान को इजाजत मिलती है कि अब इसके दिल में बुराई का ख्याल डालो, ठीक है ना। तो हम कोई थोड़ी कंट्रोल करते हैं इस बात को कि भाई इसके ख्याल में, इसके दिल में बुराई का ख्याल नहीं आएगा। भाई बुराई का ख्याल तो अल्लाह की तरफ से पैदा होगा इसके दिल में। जब अल्लाह की हिफाजत उठ गई है तो फिर तो बुराई का ख्याल पैदा होगा ना, अल्लाह ताला सजा तो दिलवा सकते हैं ना उसके दिल के अंदर बुराई का ख्याल पैदा करके, ठीक है। तो अच्छा बड़ा ठीक ठाक बंदा होगा, बड़ा उसके दिल में बुराई का ख्याल अभी तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल अल्लाह ताला इसके दिल में बुराई का ख्याल पैदा कर देंगे सजा के तौर पर कि मेरी तुमने हुक्म की यानी ए औरत तुमने मेरी मेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों करी, तुमने मेरे हुक्म को छोटा क्यों समझा, है ना, पर्दे के हुक्म को छोटा क्यों समझा तुमने। क्या यही निशानियां औरतों के लिए भी हैं? अच्छा सवाल है बहुत कि यही निशानियां औरतों के लिए भी हैं। 100% औरतों के लिए तो बल्कि निगाहों की हिफाजत वाला मामला औरतों को भी यगुद्दु मिन अबसारिहिन्न, कि ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि आप अपनी निगाहों को नीचे और नीचे रखें, ठीक है। तो निगाहों की हिफाजत औरतों के लिए भी फर्ज है, लेकिन औरतों के अंदर देखने का मामला जो है वो इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन औरतों में जो है ना ये जुबान की जो चाशनी और लजाजत और ये जो लुच जिसको कहते हैं, तो उनमें तो टॉपिक अगर यानी जरूरत से हट करके ना भी हो ना, टॉपिक अगर जरूरत से हट के ना भी हो बल्कि जरूरत ही के टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, लेकिन बड़ा जो है वो नरम तरीके से और मुलायम तरीके से, और तो बस ये मर्द को गिरा देने के लिए काफी होता है, मर्द को दिला गिरा देने के लिए ये काफी होता है, ठीक है। तो औरतों के अंदर तो ये चीज मर्दों से भी ज्यादा, और ये तो मर्दों में तो ये आएगी ना चार पांच दिन के बाद, चार पांच अटेम्प्ट्स के बाद वो ये वाला काम करेगा, औरत का तो ये इनको जरा म्यूट कर देना प्लीज। तो इस वजह से ना हमें जाहिर का मुकल्लफ बनाया गया है, हमने ये नहीं देखना कि जी बड़े नाइस गाय हैं और बड़े अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे हैं और मजबूरी में हमारी मदद कर देते हैं। भाई हमें शरीयत का मुकल्लफ बनाया गया है, ठीक है। तो औरतों को जो है वो एक तो पर्दा फर्ज है औरत के ऊपर, ठीक है, और पर्दा जो है ना वो घर में रहने को कहते हैं। ये पर्दे की तफसीलात अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं करी है तो लाजमन ये फर्ज है औरत के लिए, है ना। नमाज पढ़ना सीखते हैं ना, बगैर सीखे तो नमाज नहीं पढ़े होते ना, ठीक है ना। रोजा भी जो रखा है तो कुछ रोजे के मसाइल पता है कि ऐसे ही बस रोजा रख लेते हैं, कुछ पता नहीं है कि रोजे में किस चीज से रुकना होता है, क्या नहीं करना होता, क्या करना होता है, पता है ना कब रोजा शुरू करना होता है, कब रोजा खत्म करना होता है। ऐसे ही तो नहीं रमजान और मुबारक के रोजे रख रही होती है, ठीक है ना। तो जब नमाज और रोजा जो है वो बगैर मसाइल सीखे हुए नहीं रख रही होती है तो पर्दा बगैर मसाइल सीखे हुए कैसे कर रही है भाई, क्या हो सकता है कर ही नहीं रही हो। हाँ जाहिर सी बात है, जो नमाज नहीं पढ़ेगी तो उसको नमाज के मसाइल सीखने की क्या जरूरत है, जो पर्दा नहीं कर रही उसको पर्दे के मसाइल सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि नमाज भी पढ़ रही है, मसाइल का भी कुछ नहीं पता, बस देखा देखी है ना, वो मेरी मेरी अम्मी पढ़ रही थी इस तरीके से मैंने भी पढ़नी शुरू कर दी है। ना वजू बनाना आता है, ना तहारत करनी आती है, ना कुछ करना आता है, ना ये पता है कि खड़े होकर के पढ़ते क्या है, बैठ के पढ़ते क्या है, बस वो पढ़ रही थी तो मैंने भी इसी तरीके से उठक बैठक करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो भाई जिस तरीके से नमाज में हंसी की बात लगती है ना कि उठक बैठक करनी शुरू कर दी और समझ रही है कि नमाज पढ़ रही है, बिल्कुल इसी तरीके से पर्दे में भी ऐसा ही है कि हाँ भाई वो जो है वो पर्दा कर रही थी तो मैंने भी उनको देखा देखी पर्दा शुरू कर दी। भाई जब तक आप छोटी सी बच्ची थी तब तो देखा देखी पर्दा ठीक है, जैसे देखा देखी नमाज ठीक है जब छोटी बच्ची थी, लेकिन जब बालिग हो गई तो फिर देखा देखी नमाज को थोड़ी चलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब बालिग हो गई तो पर्दा भी जो है वो देखा देखी नहीं चलेगा, बल्कि पर्दे को भी सीखना पड़ेगा कि पर्दा होता क्या है, पर्दे के क्या क्या अकसाम है, पर्दे की क्या क्या उसके साथ जो है वो शराइत लगी हुई है, क्या अल्लाह ताला के अहकाम आते हैं, ठीक है ना। तो पर्दे के इन बातों को तफसील से सीखना पड़ेगा और इसके लिए सबसे आसान अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकाम नाजिल फरमाए थे, तो सूरह अहज़ाब की तफसीर आप इसी मारफुल कुरान से पढ़ लें, जिल्द नंबर 7 होगी मारफुल कुरान, पर्दे के अहकाम, ये अहकाम हिजाब के नाम से पूरा टॉपिक है सूरह नूर की, सॉरी सूरह अहज़ाब की तफसीर के अंदर, ठीक है। और माशाल्लाह फिर उलमा के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, सारे इसके अपने जो है सूरह अहज़ाब के ऊपर तफसीली लेक्चर्स मौजूद हैं। सूरह नूर के अंदर भी पर्दे के अहकाम आए, तो जब सूरह नूर पढ़ा रहे थे उसके अंदर पर्दे के अहकाम आए, तो फिर हमने सूरह अहज़ाब में जा करके यानी सूरह नूर को उस वक्त छोड़ा और सूरह अहज़ाब में जा करके फिर वहां से तफसीली पर्दे के अहकाम जो है वो फिर समझाए, और उन सबकी रिकॉर्डिंग मौजूद है फिर आपकी माशाल्लाह जो आलिमात हैं मौलिमात हैं पढ़ाने वाली उनसे पूछें इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो देखा देखी पर्दा नहीं होता, इस तरह देखा देखी नमाज नहीं होती, ठीक है। पर्दे के भी इन बातों को सीखना पड़ेगा। तो पहला दर्जा जो है ना वो है घर में रहने वाला पर्दा, और बाहर निकलना जो है वो जरूरत के साथ निकलना है, जो भी जरूरत का काम होगा, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से मुलाकात ही क्यों ना हो, चाहे वो तबीब के पास जाना हो या जरूरी कोई शॉपिंग करने के लिए जाना हो, तो उसके लिए भी औरत निकल सकती है, ठीक है, और बगैर महरम के निकल सकती है, निकल सकती है, निकलना चाहिए की बात नहीं है, निकल सकती है बगैर महरम के, और वो पर्दे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, ठीक है। बगैर महरम के जो जो अल्लाह ताला ने मना किया है ना वो है शरई सफर, शरई सफर, जो सफर जो शरीयत में बाकायदा यानी सफर के डेफिनेशन में जो जो सफर आता है, यानी कितना है वो 45 मील, 45 मील के करीब, या 48 मील्स है, माइल्स है, या 45 माइल्स है, तो इतना जो सफर करे ना उसको शरी सफर कहते हैं, ठीक है ना। वो शरी सफर जो है वो महरम के बगैर नाजायज है, ठीक है। लेकिन घर से निकल करके रिश्तेदार के घर जाना, जो कि 45 माइल्स की जो अंदर रहते हैं उनके यहाँ जाना जो है वो शरी सफर नहीं होता, ठीक है। और उसी तरीके से काम काज की चीज खरीदने के लिए या किसी दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाना, ये सब शरी सफर में नहीं आता है। 45 माइल्स दूर अगर माँ बाप रहते हैं तो फिर वो शरी सफर में आएगा और वो महरम के बगैर नाजायज है, ठीक है। उसकी एक्सेप्शनल केसेस निकल सकती हैं, मुफ्ती साहब से पूछ करके ऐसा भी मामला हो सकता है कि जब जो है वो आप 45 माइल्स से ज्यादा जो है वो शरी सफर भी किसी मजबूरी के तहत कर सकें, लेकिन बगैर मजबूरी के तो बिल्कुल भी उसकी इजाजत नहीं है। बहरहाल तो ये तो जी इनका एक सवाल था और इसी में रिटर्न। अच्छा चले दूसरा सवाल भी शुरू कर लेंगे, आप मजीद फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इनका दूसरा सवाल है, पहले सवाल में कोई चीज अब अगर आपको फिर से पूछनी हो या समझ में ना आई हो, मिस कर दी हो साथ में, क्या सिर्फ दीनदार लोग जो सच्चे तकवा परहेजगार वाले होते हैं बस उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए? भरोसा तो सिर्फ अल्लाह ताला पे करना चाहिए, और अगर किसी अल्लाह की मखलूक पर भरोसा कर रहे हैं तो उसका तरीका यह है कि अल्लाह के हुक्मों का लिहाज करते हुए उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, ठीक है ना। वरना भरोसा जो है ना वो सिर्फ अल्लाह पे करना चाहिए, किसी और पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। پھر اللہ کے جو حکموں کو ماننے والے ہیں تو ان پر بھروسہ, وہ بھی کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے حکموں کو ماننے والے, تو اللہ کی نسبت سے ہی کسی کے اوپر بھروسہ کر سکتے. اور جو اللہ کے حکموں کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں تو ان پر کس کس کھاتے میں بھروسہ کر رہے ہیں؟ بات یہی ہے نا. آج جو کرونا کا سارا مسئلہ چل رہا ہے نا, تو کرونا کا مسئلہ کیا ہے؟ بھروسے والا مسئلہ ہے نا, اعتماد والا مسئلہ ہے نا, ہے نا. کسی نے کرونا دیکھا, کسی نے کرونا دیکھا نہیں دیکھا, رائٹ؟ کسی نے کرونا کو چھوا نہیں چھوا, کسی نے کرونا کی آواز سنی نہیں سنی, ہے نا. تو کرونا جو وائرس ہے, COVID-19 جو بھی بولیں آپ اس کو, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھروسے کی بنیاد پر ہے نا سارا کا سارا معاملہ. ہاں بھائی وہ ایسا ہے اور ایسے منتقل ہوتا ہے لوگوں سے لوگوں میں, اور اس سے بچنے کے لیے یہ والی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, اور وہ جو ہے جب کسی کو لگ جاتا ہے تو اس کو ایسا ایسا کچھ ہو جاتا ہے. یہ کس بنیاد پر آپ نے ان چیزوں پر اعتماد کیا ہوا ہے؟ بھروسے کی بنیاد پر نا بھائی, بھروسہ ہے نا بس. تو بھائی بھروسے میں وہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر کے بھروسہ کرو. بھائی کس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو؟ کیا وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والے لوگ ہیں؟ کیا کچھ ان میں شرافت اور کچھ ہے ان کے اندر اچھی بات جو تم ان کی ہر بات پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو, ہے نا؟ تو بھائی بھروسے کے لیے دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کس کی بات پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا بھائی. اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں, تقدیر ہے, کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا اللہ کو؟ کسی نے دیکھا جنت کو؟ کسی نے دیکھا جہنم کو؟ کسی نے دیکھا تقدیر کو؟ کسی نے دیکھا فرشتوں کو؟ نہیں دیکھا نا, تو پھر کیسے مان لیا آپ نے ان ساری باتوں کو؟ بھروسے کی بنیاد پر مانا نا, اعتماد کی بنیاد پر مانا نا. کیوں کیا بھی آپ نے اعتماد اللہ کے نبی پر کیوں اعتماد کیا آپ نے؟ جس طرح آپ نے کرونا کو نہیں دیکھا اسی طرح اللہ کو بھی نہیں دیکھا, رائٹ؟ تو پھر اللہ پر اعتماد, یعنی اللہ پر اعتماد تو خیر ہم بول دیتے ہیں لیکن اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا آپ نے, رائٹ؟ تو کیسے اعتماد کر لیا ان ساری باتوں کے اوپر؟ کیونکہ نبی کو دیکھا, رائٹ؟ جنہوں نے دیکھا, ہمارے بڑوں نے دیکھا, اور انہوں نے ان کے بڑوں نے دیکھا, ان کے بڑوں نے لیکن دیکھا, رائٹ؟ نبی سچے تھے, نبی امانت دار تھے, صادق تھے, امین تھے. نبی کی زندگی جو ہے وہ ایسی تھی کہ اس کے اوپر شک کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ہم نے نبی کی ساری باتوں کو مان لیا, رائٹ؟ تو آج جو آپ نے ہیلتھ انڈسٹری اور ہیلتھ منسٹری اور جو گورنمنٹ ہے, تو آپ کو کیا پتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں؟ آج آپ کو, یعنی آج حکومت کے اوپر اتنا اعتماد ہو گیا ہے, حکومت کی ساری باتوں کے اوپر اتنا اعتماد ہو گیا ہے, کل تو نہیں تھا اتنا اعتماد, آج کیسے ہو گیا بھائی؟ اب آج وہ کہتے ہیں کہ اتنے مر گئے, آپ کہتے ہیں آمنا و صدقنا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتنے مر گئے. وہ کہتے ہیں جی ہسپتال بھر گئے, آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی وہ اسی وجہ سے بھرے ہیں, اور کسی وجہ سے نہیں بھر سکتے, یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بھرے ہیں, آمنا و صدقنا, رائٹ؟ یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کون بات کر رہا ہے کون بات نہیں کر رہا بھائی. تو بھروسہ جو ہوتا ہے نا, وہ بھروسہ جو آپ کی مرد کے اوپر بھروسے کی بات ہو رہی تھی, تو بھروسہ جو ہے نا وہ شرائط کے ساتھ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا, غیر مشروط بھروسہ نہیں کیا جاتا. تو اب جو عورت ہے وہ کسی کے اوپر اگر بھروسہ کر رہی ہے, تو بھائی کیا یہ دیکھنا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کیا بھروسے کی شرائط پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا, امانت دار ہے کہ نہیں ہے, رائٹ؟ صرف سویٹ ٹاک کی بنیاد پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کہ جو ہے وہ چند ضروریات پوری کر دی اس نے اٹھا کر کے, جیسے کہ ورک پلیسز کے اندر جو بھائی ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے, ہیں پاکستان میں سارے کے سارے بھائی ہوتے ہیں, اور انڈیا میں جو ہے وہ جو ہندو ہے کچھ دنوں تک ہندو جو ہے وہ برے لگتے ہیں اور مسلمان بھائی بن جاتے ہیں کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اور ورک پلیسز کے اندر. تو جو مسلمان ہے وہ بھائی ہے, جو ہندو ہے وہ تو پھر غیر ہے. تو یہ تو کوئی بنیاد نہ ہوئی نا بھروسہ کرنے کی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے حکموں کے مطابق انسان کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا, اور اگر آپ نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا تو پھر بھروسہ نہیں ہے یہ بلکہ صرف دھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے. جو عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی لیکن اب چاہتی ہیں کرنا لیکن اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کیا کریں؟ جب بھی اللہ کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگیں کہ اے اللہ میں نیک بننا چاہتی ہوں، میں آپ کے حکم پہ عمل کرنا چاہتی ہوں، بن نہیں پا رہی، لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، میرا اپنا نفس رکاوٹ ڈال رہا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے مجھے نیک بنا دینا اور مجھے اس حکم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں. جیسے کہ کوشش کری کرنے کی لیکن آس پاس کے لوگوں نے عجیب سی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کون سا روپ ہے. کچھ رشتے داروں نے کہا کہ اب ہمارے آگے کی بچی ہم سے پردہ کرے گی، ایک نے کہا کہ بس آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دوسرے تو ایسا کریں نا آپ آنکھوں کے اوپر پردہ کر لیں، انہوں نے کہا اچھا آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے تو پھر نقاب پر آنکھوں کے اوپر ہی ڈال لیں. دوسرے نے کہا کہ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا داری بھی نبھانا ہوتی ہے، رہ جاؤ، ایسا نہیں ہوتا کہ بس دین کی، اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ بس دین کے ہو کر رہ جاؤ، ایسا نہیں ہوتا کہ بس دین کے ہو کر رہ جاؤ. جنہوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس دین کے ہو کر رہ جاؤ، تو مجھ سے تو کہنا چاہیے کہ آپ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، کیونکہ ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ ان سے بندے کے ایمان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے. دین کیا ہو کر رہ جاؤ، بھائی دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو رہنے کا طریقہ بتایا ہے اسی کو تو دین کہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کے ہو کر کے رہ جاؤ، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے ہو کر رہ جاؤ، بس ایسا نہیں ہوتا. تو بھائی آپ خود مسلمان اب ہیں بھی کہ نہیں ہیں پتہ نہیں، اب آپ کا دین لوگ بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، لیکن کلمات جو ہے نا وہ کفیہ کلمات ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس دین کے ہو کر رہ جاؤ، سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں بولتے ہیں. تیسرے نے کہا کہ چائلڈ ہڈ کزنز جو ساتھ بڑے ہوئے ہیں تو بہن بھائی کا تھوڑی ہوتا ہے، ان سے کوئی پردہ تھوڑی ہوتا ہے. اچھا یعنی کزن سے پردہ کوئی تھوڑی ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے کتنے سارے لوگوں نے کتنا کچھ کہہ دیا آپ سے. چوتھے نے کہا کہ بس سر کو کور کرنا چاہیے، حجاب بھی پردہ ہوتا ہے، ان کو احکام الحجاب پڑھنے کے لیے کہنا پڑے گا کہ سر کا جو اسکارف ہوتا ہے وہ اسکارف ہوتا ہے، وہ حجاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو سر پہ کپڑا باندھ دینا نا اس کو حجاب نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا جواب دیں ان سب کو؟ اچھا ڈسکریج کیا، اگر اب کوئی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسی باتیں بہت زیادہ ڈسکریج کر دیتی ہیں. یا ہم اس میں کہیں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دیتے کہ ہم خود کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ کمزور ہیں اور شیطان روکتا ہے اچھے کام سے، اس لیے ہر بات شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو سوالات ہیں ہر سوال کا الگ الگ جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں شاید دے بھی دیں، لیکن ابھی ویسے بھی ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو ایک جواب جو ہے نا وہ ہر سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے. پچھلے دنوں آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے ایک بیان بھی شیئر کیا تھا، ایکچولی سب کے ساتھ نہیں کیا تھا، وہ دوسرے گروپ میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی جو ہمارے شیخ ہیں تو ان کا ایک بیان تھا ذکر وغیرہ کے متعلق تھا. تو سوال کرنے والی جو خاتون ہیں انہوں نے وہ بیان سنا تھا، اس کو بتایا کہ انہوں نے بتایا تھا. تو اس بیان میں نا انہوں نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، کہا تو انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں تھا لیکن یہاں پر بھی وہی جملہ بطور جواب کے ہر سوال کا ایک ہی جواب. کیا وہ جملہ تھا؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال. فارسی کا جملہ ہے لیکن اردو کے یہ الفاظ ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اے لقا، لقا کہتے ہیں ملاقات کو، تو جواب، یعنی تو جواب ہے ہر سوال، ہر سوال کا، ٹھیک ہے. ملاقات کر لینا یہ ہر سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے. तो अब आपके इन सवालों के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी वाली मुलाकात की बात हो रही है, ठीक है ना जी? बताएं जरा, जिससे सवाल किया उससे मुलाकात करेंगी तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। बल्कि जिन औरतों ने आपकी तरह बड़ी उम्र में आकर के पर्दा शुरू किया, राइट, ऐसी कम तो नहीं है माशाल्लाह। हमारे घर में भी इसी तरह की, हमारी बेगम साहब अभी ऐसे ही है ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हत्ता के जॉब, कहीं पर्दा नहीं था, फिर बाद में पर्दा शुरू किया, ठीक है ना। और सऊदी अरब में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में, राइट। और अमेरिका में ये भी नहीं कि जी सारे गैर मुस्लिम होते हैं तो उनको तो परवाह नहीं होती, कोई क्या कुछ भी करे, कपड़े उतार दें उनको कोई परवाह नहीं होती, कपड़े पहन लें उनको कोई परवाह नहीं होती। अमेरिका का इस तरह का मुआशरा कहलाता है नहीं वैसे ऐसा मुआशरा, लेकिन कहलाता है कि उनको तो कोई परवाह नहीं, तो इस वजह से अमरीका में पर्दा करना बड़ा आसान काम है। नहीं, बल्कि अमरीका में भी एक तो पर्दा करना मुश्किल काम है, दूसरा ये कि पाकिस्तानियों के ही दरमियान पर्दा करना, क्योंकि पूरी एक्सटेंडेड फैमिली भी पाकिस्तानियों की ही रहती है और जितने मिलने वाले रिश्तेदार सब पाकिस्तानी, अमेरिका के अंदर भी, ठीक है। तो ये जो सारे ताने जो आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया ना, ये सारे ताने जो है वो उनको अमेरिका में भी मिले, ठीक है ना। और अमेरिका का अपना माहौल अलग, सही है, लेकिन पर्दा कर लिया ना। और इसी तरीके से बेशुमार औरतें ऐसी हैं, अनगिनत ऐसी औरतें हैं कि जिन्होंने जिस भी माहौल में, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे अमेरिका में हो, उन्होंने ये सारे स्टेप्स क्रॉस किए हैं, सारे ताने सुने हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा। कुछ तो ऐसी भी थी कि जिनको कि उनके बाप ने ऐसे ऐसी सुनाई है कि जो हम तस्वीर नहीं कर सकते, अपने अब्बू से ऐसे ऐसे। कुछ तो ऐसी भी हैं, हजरत के बयान के अंदर सुना हमने खुद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी से ऐसा वास्ता पड़ा कि उनके बाप ने कहा तुम घर से निकल जाओ, तुम पर्दे के साथ मेरे घर में रह ही नहीं सकती हो। ऐसे बाप भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर, मुसलमान मुआशरे के अंदर, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पर्दा किया। तो ये सबके लिए पर्दा करना कैसे मुमकिन हुआ? आसान तो नहीं हुआ, मुश्किल तो हुआ, लेकिन मुमकिन कैसे हो गया? ए लिकाए तू सवाले हर जवाब, ऐसे मुमकिन हुआ। क्या मतलब? कि उन्होंने उन औरतों की सोहबत इख्तियार करी, उनसे दोस्ती लगाई, उनके साथ ताल्लुक बनाया जो के पर्दा कर रही थी, उनसे मुलाकात करी, मुलाकात मतलब उनसे उनके साथ दोस्ती लगाई, उनके साथ उठना बैठना शुरू किया और उनके साथ जो है वो अपना ताल्लुक बनाया जो पहले से कर चुकी थी। जब ऐसे लोगों के साथ उनका ताल्लुक बन गया तो फिर उनके हर जवाब का सवाल मौजूद था, राइट। तो उसी तरीके से आपको भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमने क्योंकि हमारा हम हमें तो पर्दा करना नहीं है, हम तो मर्द हैं, मर्द तो मेहनत करनी होती है और पसीना खाना होता है और बाहर के सारे काम करने होते हैं और घर के भी, उसके बाद घर के भी कुछ काम करने होते हैं, अच्छे खासे बाहर के भी काम करने होते हैं, लेकिन पर्दा जो है ना वो नहीं करना होता क्योंकि बाहर के काम पर्दों के साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से ना ये हम तो आपको थ्योरेटिकल आंसर इसका दे सकते हैं, अहकाम उल हिजाब का भी बता दिया कि वो भी आप पढ़ लीजिए और जो है वो आप लेक्चर्स भी सुन लीजिए। और असल बात जो आपको बताती है वो ये है कि जो पर्देदार खवातीन हैं उनके साथ अपना ताल्लुक बनाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए, मुलाकात कीजिए, नहीं कर सकती तो फोन पे बातचीत कीजिए, जैसे भी कर कीजिए, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है ना। यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज डूइंग दिस, ठीक है। चले, टाइम हो चुका है तो उसको क्लास खत्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में। वाफर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह। सलाम।